श्लोक संख्या 12। क्वचित् क्वचित् क्षीण धनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थान विहारहीनः याचन् परादप्रतिलब्धकामः पारक्य दृष्टिर्लभते वमानम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: संसार के जंगली मार्ग में कभी कभी व्यक्ति धनहीन हो जाता है, जिसके कारण उसके पास न तो समुचित घर, बिस्तर या बैठने का स्थान होता है, न ही समुचित पारिवारिक भोग ही उपलब्ध हो पाता है। अतः वह अन्यों से धन मांगता है, किंतु जब मांगने पर भी उसकी इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं, तो वह या तो उधार लेता है या फिर अन्यों की संपत्ति चुराता है। इस तरह वह समाज में अपमानित होता है। तात्पर्य: इस संसार में भीख मांगने, उधार लेने या चुराने के सिद्धांत अत्यंत उपयुक्त हैं। जब किसी को आवश्यकता पड़ती है तो वह मांगता, उधार लेता या फिर चोरी करता है। यदि मांगने से काम नहीं चलता तो उधार लेता है। यदि उधार अदा नहीं कर पाता तो वह चोरी करता है, और जब पकड़ा जाता है तो उसका अपमान किया जाता है। यह इस संसार का नियम है। कोई भी ईमानदारी से जीवित नहीं रह सकता। अतः मनुष्य छल करके, मांग करके, उधार ले करके या चोरी करके अपनी तृप्ति करना चाहता है। इस तरह इस संसार में कोई भी शांतिपूर्वक नहीं रह सकता। अनुवाद हरे कृष्णा। जड़ भरत महाराज रहुगण को इस भौतिक जगत की या इस संसार की पहचान करा के दे रहे हैं इस अध्याय में। असलियत में जो यह संसार का रूप है वो खोल के दिखा रहे हैं। ऐसे मान लीजिए जब मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि शरीर की सही पहचान क्या है। तो शरीर को काटा जाता है, किसी मृत शव को, और फिर शरीर खोला जाता है और अंदर शरीर के जो है जैसे है वैसे दिखाया जाता है, कड़वा सत्य। अगर कोई व्यक्ति शरीर के अंदर क्या है वो देखता तो शरीर के प्रति आकर्षित नहीं होता। ये शरीर तो केवल गंदी चीजों से भरा है, बस केवल बाहरी रूप से इस शरीर को हम सजाते हैं, ढकते हैं, नाना प्रकार के आभूषणों से, गहनों से, अच्छे अच्छे कपड़ों से इसको सजाने से हमें लगता है कि ये बहुत सुंदर है। परंतु असली कड़वा सत्य तो ये है कि ये भौतिक शरीर केवल नाना प्रकार के गंदे पदार्थों से बना हुआ है जो सड़ती रहती है। ये शरीर भी सड़ रहा है। ये संसार का जो भी, संसार की जो भी वस्तु है वो बस सड़ती रहती है। केवल एक वस्तु है जो कभी सड़ नहीं सकती, वो आत्मा है। आध्यात्मिक वस्तु सड़ नहीं सकती। तो इसी तरह से इस जगत का विश्लेषण भी हमें करना चाहिए। आदमी को लगता है कि ये जगत एक आनंद का स्थान है, जहां वो बहुत मनोरंजन कर सकता है, भोग कर सकता है, सुखी रह सकता है, ये संसार का चमक धमक बहुत प्रभावशाली है। आदमी भगवान के माया शक्ति के चंगुल में फंस के सोचने लगता है कि ये दुख भरा सागर सुख का सागर है और रमण करने का प्रयास करता है। बार बार ठोकर खाने के बाद भी, बार बार निराश होने के बाद भी उसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आती है, फिर भी वो अपने सुख के प्रयत्न जारी रखता है और इस तरह से हजारों करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, फिर भी अपना प्रयास छोड़ता नहीं है, जिद से पड़ा रहता है, क्योंकि अभी तक उसके मन में ये संसार की सही पहचान बैठी नहीं है उसके हृदय में। तो इस अध्याय में जड़ भरत ने कितने अच्छी तरह से इस संसार का पोल खोल दिया है हम सब के लिए कि संसार में क्या चलता है, ये संसार का असली रूप क्या है, ये संसार में लोग किस तरह के होते हैं। अभी हम कहेंगे कि हाँ, हमें लोग, कई लोग आके धोखा देते हैं, हमारे शत्रु हैं, कितने भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना खून खराबा हो रहा है, तो केवल उन लोगों के बारे में हम सोचते हैं शायद जो हमारे विरुद्ध हैं या जो गंदे काम करते हैं, लेकिन जो हमारे निकट में हैं उनके बारे में क्या? उनके बारे में भी जड़ भरत ने बहुत कुछ सुनाया है हमें। तो इसी तरह से यहाँ पर जड़ भरत बता रहे हैं महाराज रघुगण को कि किस तरह से यहाँ लोग इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं और इतने लोभी होते हैं। दुर्भाग्यशाली क्यों? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि एक आदमी धनहीन हो जाता है, करोड़पति आज है, कल रास्ते पे आ जाता है, राजा से रंक, ये अक्सर देखा जाता है। अंततः हर एक व्यक्ति को धनहीन होना है मृत्यु के समय, या तो हमारा धन हमसे छीन लिया जाएगा या तो हमारा शरीर हमारे धन से छीन लिया जाएगा। धन जहां है वहीं रहेगा, हमारा शरीर चले जाएगा, या तो हम हैं वहीं के लेकिन हमारा धन कहीं और चला गया। कहने की बात यह है कि हम और हमारा धन दोनों एक न एक दिन अलग होने हैं, हमें धनहीन होना ही है। और जब व्यक्ति जीवित अवस्था में धनहीन हो जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसके मन के अंदर भोग की भावनाएं अभी तक उमड़ रही हैं, इसीलिए वो किसी न किसी तरह से उस धन को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा करता है। सबसे पहले क्या करता है? दूसरे से जाके मांगता है, अरे मेरे पास मेरा धन चला गया, मैं क्या करूं, मुझे थोड़े पैसे दे दो। जब उसमें असफल हो जाता है तो कहता है ठीक है मुझे उधार तो दे दो, उधार लेता है। जब उधार भी नहीं मिलता है तो कुछ छल करके, कुछ धोखेबाजी करके पैसे निकालने का प्रयास करता है। जब वो भी काम नहीं करता तो फिर चोरी करता है, और चोरी करके कभी पकड़ा जाता है कभी नहीं पकड़ा जाता है। जब तक वो नहीं पकड़ा जाता है चोरी करते रहता है, जब पकड़ा जाता है अपमानित हो जाता है, अपमानित होने के बाद बहुत दुखी हो जाता है। और ये संसार है। हम अखबार में पढ़ते हैं स्टॉक मार्केट में इसने करोड़ों रुपए का कोई स्कैंडल कर दिया और फिर उसका नाम फोटो सब छप रहा है, लोग उसको अपमानित कर रहे हैं, बुरे शब्द बोल रहे हैं, तो थोड़े लाखों करोड़ों रुपए के लिए वो कितना बदनाम हो जाता है आदमी। हर एक आदमी जानता है कि देखो ये सड़क में जा रहा है, इस व्यक्ति ने कितनी चोरी की। इस तरह से आदमी दुखी हो जाता है, अपनी संपत्ति से संतुष्ट नहीं रहता। वैसे चोर कौन है? चोर वही है जो दूसरों की संपत्ति को हड़प लेता है, दूसरों की संपत्ति के ऊपर हक जमाने का प्रयत्न करता है, उसका भोग करता है, यही चोर है। तो असलियत में देखा जाए तो इस संसार में सभी लोग चोर हैं। क्योंकि वो भगवान की संपत्ति का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की अनुमति नहीं लेकर। सब कुछ भगवान का है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिं ऋच्छति। भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सारे यज्ञों का, तपों का, कार्यों का भोक्ता हूं। जो भी तुम करते हो उनका फल का भोक्ता मैं हूं। तुम्हें कर्मों के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, वो अधिकार केवल मेरा है। इसका मतलब है कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, हम भोग्य है, भोक्ता नहीं। दूसरी बात भगवान कृष्ण बताते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोकों का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक मैं हूं। तुम नहीं हो हे अर्जुन, ना तो ये है ना वो है। इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा धन, हमारा कुटुंब, हमारा शरीर, हमारे कपड़े, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, एक कौड़े पैसे हमारे नहीं है। और तीसरी बात भगवान बताते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, कि मैं सारे प्राणियों का शुभचिंतक हूं। केवल भगवान ही हमारे शुभचिंतक रह सकते हैं। इस संसार का कोई भी आदमी हमारा वास्तव में शुभचिंतक नहीं रह सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति सूक्ष्म या स्थूल रूप से स्वार्थी होता है। यहां तक कि जो माता पिता होते हैं, समझा जाता है कि उनका जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, क्योंकि वो भी बच्चे की कितनी सेवा करते हैं। लेकिन अंततः माता पिता के मन में भी इच्छा रहती है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, हमारा देखभाल करेंगे हमारे बुढ़ापे में। ये भावना भी सबके अंदर रहती है। तो ये संसार में वास्तव में कौन निस्वार्थी हो सकता है? केवल जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वही निस्वार्थ हो सकते हैं, या तो फिर भगवान। तो जो इन तीन बातों को जान लेता है भलीभांति, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। और क्योंकि लोग इस तथ्य को नहीं जानते हैं, इसलिए सभी लोग अशांत हैं, विचलित हैं। हर घर विचलित है, हर समाज, हर देश विचलित है, सारा विश्व है विचलित है। सब जगह झगड़े, खून खराबा, ये सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ये नहीं स्वीकार करते कि ये धन भगवान का है, ये संपत्ति भगवान की है, ये भूमि भगवान की है, इसलिए अशांति है। अगर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति से संतुष्ट रह जाता, जो अभी उसके पास उसके भाग्य में, कपाल में लिखा हुआ है, उससे अगर वो संतुष्ट रहता तो शायद इतना खून खराबा नहीं होता। लेकिन समस्या ये है कि आदमी इन चीजों से संतुष्ट नहीं होता है। वैसे अलग अलग तरह के झगड़े होते रहते हैं समाज में, सब चोरी के माल के ऊपर झगड़ा चल रहा है। जितने भी झगड़े आप देखिए, छोटे झगड़े, बड़े झगड़े, देशों के बीच में युद्ध, दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध, ये झगड़े केवल चोरी के माल के ऊपर चल रहा है। बस हमने किसी और से माल हड़प लिया है, दूसरा भी उस पर हक जमाना चाहता है, हम दोनों का नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हम झगड़ रहे हैं। तो इस संसार में ईमानदार कौन है? कोई नहीं। ये एक छोटी सी कहानी तो आप सब जानते हैं कि एक बार चार चोरों ने, डाकू ने, एक बैंक पे डाका डाल दिया, लूटा बैंक को, 10 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, और फिर अपने घर में जाकर बड़े ईमानदारी से चारों के बीच में 10 करोड़ रुपए बांट लिए, 2.5 करोड़, 2.5, 2.5, 2.5, और फिर सोचने लगे हम कितने ईमानदार हैं। ठीक है, ये चोरों के बीच में ईमानदारी अपने जगह में ठीक है, कम से कम उतनी तो ईमानदारी थी उनके अंदर, परंतु ये ईमानदारी क्या प्रशंसनीय है? ये ईमानदारी की बुनियाद क्या है? चोरी है। ये ईमानदारी चोरी की बुनियाद पर खड़ी है तो इस ईमानदारी का क्या मतलब है, क्या फायदा है, क्या दम है इसमें? उसी तरह से संसार में आजकल तो वैसे भी ईमानदार लोग नहीं मिलते, लेकिन अगर एक विरला कहीं बेचारे कम ईमानदार आदमी मिल भी जाए, उसके पास ज्ञान नहीं है कि सब कुछ सारी संपत्ति भगवान की है, वो भी अपने घर को अपना समझता है, अपने धन को अपना समझता है, तो वो भी एक प्रकार का चोरी है। तो उसकी भी ईमानदारी उस चोरी के बुनियाद पर आधारित है। बताया जाता है कि यहां छोटे चोर हैं और बड़े चोर हैं, लेकिन सभी चोर हैं। हिंदी में कहावत है, खीरा चोर या हीरा चोर, चोर तो चोर है। राजा सिकंदर के बारे में ऐसे कहावत है, आप जानते हैं सिकंदर अलेक्जेंडर कितने बड़े राजा थे, पराक्रमी राजा, सब जगह दुनिया भर में जाके उन्होंने सारे जगहों को प्रांतों को वश में कर लिया, यहां तक कि वो सिंधु नदी तक आ पहुंचे थे, सिंधु को पार नहीं कर पाए, लेकिन यूरोप से ग्रीस देश से लेकर यहां तक पहुंचे, सारे देशों को उन्होंने पराजित कर दिया, वश में कर लिया। तो एक बार हुआ ये कि उनके राजधानी में एक चोर को पकड़ा गया, जिसने कोई सब्जियां या कुछ चोरी करती या फल फूल कुछ चोरी कर लिए थे, तो उसको दंड दिया गया। राजा के सामने जब आया कि इसने चोरी की, तो उस व्यक्ति ने कहा, केवल मुझे, मैं कबूल करता हूं कि मैंने चोरी कर ली और मुझे दंड मिलना चाहिए, लेकिन क्या इस देश में सभी चोरों को दंड नहीं मिलना चाहिए? तो राजा ने कहा, हाँ मिलना चाहिए, जो सबसे बड़ा चोर है उसको तो सबसे बड़ा दंड मिलना चाहिए, बराबर है? बोला हाँ सही है। तो फिर वो चोर कहने लगा राजा से, सिकंदर से, कि सबसे बड़ा दंड तो आपको मिलना चाहिए। अरे क्या मजाल इसकी, ये मेरे सामने आके ऐसे बात कर रहा है। बोले क्या मतलब? कहने लगा, मैं तो छोटा चोर हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे खाने पीने के लिए मैंने थोड़े फल ये वो सब चोरी किए वहां से दुकान से, लेकिन आप तो भगवान की भूमि को चोरी कर रहे हैं, आप का समझ रहे हैं, इस देश को हड़प कर लिया, उस देश को हड़प कर लिया, यहां वहां जाकर दूसरे राजाओं की संपत्ति छीन लेते हैं, तो आप तो सबसे बड़े दुनिया के चोर हैं, तो आपको तो सबसे बड़ा दंड मिलना चाहिए। वहां जो उपस्थित दरबार में मंत्री सैनिक थे, वो तो गुस्से हो गए, आग बबूले होकर तलवार लेकर सब सामने आए थे उसको मारने के लिए, लेकिन राजा सिकंदर बड़े बुद्धिमान था, रोका सबको, हाँ ये बड़ा बुद्धिमान आदमी है, छोड़ दो इसको, बात तो सही बोल रहा है, इसका मतलब है कि जब हमारा जन्म हुआ था हम साथ में ये सब धन संपत्ति लेकर नहीं आए थे, जाते जाते भी हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे, केवल बीच में आके यहां से चोरी कर ली, वहां से चोरी कर ली, वहां से चोरी कर ली, और वे बोलते हैं कि ये मेरा है। इस तरह से सभी लोग यहां पर ये भूल जा रहे हैं कि सारी संपत्ति भगवान की है, और जो किस्मत से भगवान की कृपा से हमारे हवाले आ जाता है, उसको हमें बड़े शांति से, संतुष्टि से स्वीकार करना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृदः कस्य स्विद्धनम्। ईशोपनिषद में बताया जाता है कि सारी संपत्ति भगवान की है, परंतु हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को अपना अपना कोटा दिया होता है, वो कोटा हर एक प्राणी को अपने प्रारब्ध या अपने कर्म के अनुसार मिलता है। इसलिए कोई व्यक्ति एक अमीर परिवार में जन्म लेता है, कोई व्यक्ति एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, तो भगवान हर एक व्यक्ति को अपना अपना कोटा देते हैं उसके व्यक्ति के कर्म के अनुसार, और इस तरह से वो व्यक्ति अगर संतुष्ट रहे अपने परिस्थिति से, तो फिर वो शांति को प्राप्त कर सकता है। अगर वो शांत नहीं रहे तो फिर बड़ी समस्या है, उसकी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि अगर वो अपने वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट नहीं रहता तो आगे कभी भी जाकर वो संतुष्ट नहीं रह पाएगा। इस संसार में हम देखते हैं कि लोग छोटे छोटे हिरण्यकश्यप बन बैठे हैं। हिरण्यकश्यप के गुण क्या थे? उसके पास सारे त्रिभुवन का राज्य था, भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक उसके वश में थे। देवी देवताओं को उसने हटा दिया था अपने अपने स्थानों से, सारे देवताओं का काम अकेले संभालता था हिरण्यकश्यप। मान लीजिए कि अगर राजा ने सारे मंत्रियों को हटा दिया, एक आदमी आया, राजा को भी उसने हटा दिया, सारे मंत्रियों को भी हटा दिया, और अकेले सारे विभागों को संभालता है, रक्षा मंत्री भी वही है, खाद्य का मंत्री भी वही है, खेल क्रीड़ा का मंत्री भी वही है, प्रधानमंत्री भी वही है, सारे मंत्रियों का, सारे मंत्रालयों का काम वही करता है। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसे कर लिया था। अग्निदेव का काम, चंद्रदेव का काम, सूर्यदेव का काम, वरुण देव का काम सब अकेले संभालता था। स्वर्ग लोक में बेरोजगारी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, किसी को कोई काम ही नहीं वहां, क्योंकि हिरण्यकश्यप अकेले सब संभाल रहा है, सब धन संपत्ति सब कुछ हिरण्यकश्यप के पास। परंतु प्रहलाद ने बताया हिरण्यकश्यप को, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास सुख नहीं है, मन की शांति नहीं है आपके पास, आपने सबको वश में कर लिया लेकिन आपने आपके इंद्रियों को वश में नहीं किया, इसलिए आप दुखी हैं, इसलिए जितना भी आपको मिले आप फिर भी असंतुष्ट रहेंगे, इसलिए आपको और हड़प करना है, और निकालना है, इससे चोरी करो, उसको मारो, इसका धन लूट लो, यही चल रहा है। तो पूरा ब्रह्मांड भी आपको मिल जाए, ब्रह्मा जी का पद भी मिल जाए, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियां वश में नहीं है। इसी वजह से लोग आजकल एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, मेरा तुम्हारा, मेरा तुम्हारा, लोभ इतना बढ़ गया है आज समाज में। एक बार एक व्यक्ति ने घोषणा की अखबार में कि मेरे पास बहुत जमीन है और मैं ये जमीन ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति को देना चाहता हूं जो कि भागेगा और भाग कर लौट के आएगा, जितना जगह वो कवर करेगा उतना जमीन मैं उसको दे दूंगा, लेकिन उसे सूर्योदय तक शुरू होना है और सूर्यास्त तक पहुंच जाना है मेरे पास, जहां मैं खड़ा रहूंगा, और जितनी जमीन में वो भागेगा उतना जमीन मैं उसको दे दूंगा। तो कई व्यक्ति आए, उनमें से एक व्यक्ति जो आया, सूर्यदेव को बराबर उसने शुरू किया अपना भाग, भागते 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 उसने सोचा कि इतने जल्दी क्यों लौट के जाऊं, अभी और भागूंगा तो और बहुत कुछ मिलेगा, अगर वो एक घंटे दो घंटे भाग कर आ जाता तो उसको कितनी जमीन मिल जाती, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ तो कम से कम मिल जाते उसको, लेकिन उसे संतुष्ट नहीं हुआ, सोचा और खाने के लिए समय नहीं, पीने के लिए समय नहीं, और भागना है क्योंकि और जमीन रुकेगा तो वहां नुकसान हो जाएगा, उतनी जमीन कम मिलेगी, तो और भागने लगा भागने लगा, थक गए थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे बैठ, लेकिन फिर भी चल रहे, और जमीन मिलेगी, और मिलेगी, चलो एक बार अब परिश्रम कर लिया जीवन भर सुखी हो जाएंगे, चलो और भागो। दोपहर हो गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, और भी महाशय दौड़ रहे, चल रहे हैं, कभी गिर रहे हैं फिर भी उठ रहे हैं और दौड़ रहे हैं। सूर्यास्त का समय नजदीक आया, सोचा अभी वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर और थोड़ा सा, और फिर भागते 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 उस जमींदार के पास आने लगा थे कि बस थोड़े 15-20 फुट पहले वहीं पर गिर के मर गए थकावट के मारे। तो ये हमारे जीवन की समस्या है, कितने भी कितना भी कुछ हमें मिले संतुष्ट नहीं होंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस तरह से समाज की समस्याएं अनंत हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो इससे संतुष्ट रहता है कि भाई क्यों खामखा इधर उधर भाग दौड़ करेंगे, जो अपनी ईमानदारी के परिश्रम है उससे संतुष्ट रहो। लेकिन आजकल क्योंकि लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं करना चाहते हैं और भगवान के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो सब एक दूसरे के बीच में झगड़े, चोरी, एक चोर के माल दूसरा बड़ा चोर हड़प कर लेता है। जैसे कि समंदर के भीतर एक मछली जो है छोटे मछली को खा जाती है, फिर उस मछली को और बड़े मछली आके खा जाती है, तो ऐसे ये संसार में चलता है, एक चोर दूसरे चोर को निगल लेता है, फिर तीसरा चोर आता है वो और उससे बड़ा होता है, वो दूसरे को निगल लेता है, यहाँ छोटे और बड़े चोरों के बीच पे यहाँ पे एक एक को दूसरे को खाने की प्रतियोगिता चल रही है। हमारी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, मॉडर्न इकोनॉमी, वो केवल उधार के ऊपर आधारित है। लोन लेते रहो। शायद ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई कुटुंब होगा जहां कोई लोन नहीं लिया होगा किसी ने। यहां तक कि मंदिर भी इससे दूर नहीं है, मंदिर को भी कभी कभी लेना पड़ता है। सब जगह लोन पे सब कुछ चल रहा है, हर चीज के लिए लोन चाहिए। घर चाहिए, लोन ले लो। टीवी चाहिए, लोन। स्कूटर चाहिए, लोन। गाड़ी चाहिए, लोन। हर चीज के लिए लोन। तो इतने ढेर सारे लोन इकट्ठे कर लो, जीवन भर पैसे वापस करते रहो। जीवन भर तक, अंतिम दम तक टेंशन, मन में तनाव कि कब वो पैसे लौटाएंगे। ये तो ईमानदार लोगों की बात है। फिर ऐसे कई लोग हैं, वो लोन लेंगे फिर निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि उनको तो लौटाना है नहीं, वो तो शांति से रहेंगे। बेचारे जिसने दिया है वो अशांत रहेगा। तो इस तरह से संसार में यही सब चलता है, उधार के ऊपर सब कुछ चल रहा है, और उधार के पैसे पे सब लोग घमंडी बन रहे हैं। वैसे तो भगवान की संपत्ति को हमने उधार पे लिया है। कोई आदमी सोचता है मेरे पास इतना है, अरे हमारा कहाँ है, ये तो भगवान का है। लेकिन वैदिक अर्थव्यवस्था, वैदिक इकोनॉमी, वो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी। हरेक व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं बनता था। आजकल हरेक आदमी गुलाम बन गया है, किसी न किसी का गुलाम बन गया है। ज्यादातर के बैंक का गुलाम, या कोई सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी का गुलाम, या कहीं और से उसने लोन लिया उसका गुलाम। उसकी कितनी बातें सुनने पड़ती हैं, बैंक वाला फोन करेगा, ये क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया। लेकिन पहले जमाने में भगवान कृष्ण ने जैसे अर्थव्यवस्था बनाई थी, वैसे साधारण किसान भी था, सर ऊपर करके चलता था, क्योंकि वो किसी पे आधारित नहीं रहता था। अगर आधारित रहता तो केवल तीन चीजों के ऊपर, क्योंकि वैदिक अर्थव्यवस्था तीन खंभों पे आधारित हुआ करती थी। एक है भूमि, भूमि पे तो आधारित होना ही है हमें। खड़े भी होना तो भूमि पे, बैठना भी है तो भूमि पे, और खाना भी है तो भूमि के आधार पर। तो भूमि, ये हमारा पहला आधार। दूसरा आधार कोई बता सकते हैं? गाय। गाय से हमें दूध मिलता है, जिससे कि हम घी बना सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, दूध हम पी सकते हैं, हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो सकता है, बुद्धि तेज और आध्यात्मिक हो सकती है। गाय से हमें गोबर मिलता है, जिसको हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे खेतों में। गौमूत्र हम पी सकते हैं औषधि रूप में, और बहुत सारे फायदे हैं। तो यह है गाय। और तीसरा खंबा कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण? भगवान। भगवान के ऊपर आधारित रहना, निर्भर रहना, ये तीन खंबे। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान का नामोच्चारण करेगा, उनकी कथा का श्रवण कीर्तन करेगा, गायों का पालन करेगा, अपनी खेती करेगा, उसे किसके ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता है? लेकिन आजकल बड़े पैमाने पर हमने इन तीनों खंभों को उखाड़ दिया है प्राय। न तो भगवान रहे हमारे जीवन में, गाय तो कत्ल खाने में गए, और भूमि में बड़े बड़े फैक्ट्रियां खड़ी कर दी, तो रह क्या गया हमारे लिए? इसलिए ये कृत्रिम अर्थव्यवस्था निर्माण हो गई है, जिसमें हर एक व्यक्ति गुलाम बन गया है दूसरे का। इस तरह से कोई आदमी स्वावलंबी नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये जो दर्शन है, ये कोई नया दर्शन नहीं है, पुराना है। पहले भी चार्वक मुनि ने बताया था, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमनो भवेत। चार्वक मुनि ने कहा कि उधार ले लो, लोन ले लो, चोरी करो, डाका डालो, कमाओ, कुछ भी करो, लेकिन ऐश करो, घी के बनाए हुए पदार्थ खाओ। घी वैदिक जमाने में ऐश्वर्य का लक्षण था। भोजन अगर घी में बने तो हम समझ सकते हैं कि बढ़िया श्रेष्ठ भोजन है। वैदिक काल में कोई डालडा पोस्टमैन नहीं होता था, वहां सब गाय के दूध के घी में बनता था सब। अभी अभी हम थोड़े दिन पहले एक गांव में गए थे, जंगल में है, पहाड़ में है, बीच में, प्राय कोई नहीं जाते वहां पर। और वहां के लोग बता रहे थे, हम उनको बता रहे थे कि आपने सब गायों को बेच दिया, अभी भैंस संभाल रहे हैं, तो गायों को संभालना चाहिए फिर से, चर्चा चल रही थी। तो वो लोग कह रहे थे, हाँ हाँ पहले जमाने में हमारे पास भी 10-15 साल पहले हमारे पास 20-25 गाय हुआ करते थे घर में, न जाने कैसे धीरे धीरे ये गाय चले गए, अभी भैंस आ गए, अभी डेयरी सिस्टम चालू हो गया, डेयरी को दूध बेचना ये सब चालू हो गया। और फिर वो बताते थे कि ऊपर एक धनगर वाड़ा है, धनगर लोग मतलब जो केवल गायों को चराते हैं, यही उनका व्यवसाय है, अनादिकाल से उनका पेशा यही है, बस गायों को संभालते हैं और खुश रहते हैं। तो ये लोग कह रहे थे कि हमें याद है कि 15-20 साल पहले भी ये धनगर लोग, उनके पास इतना दूध, इतना घी, इतनी लस्सी वगैरह रहती थी कि बस सीमा के बाहर। वो कहते थे कि आज भी वहां व्यक्ति मिलेंगे जो इतने बड़े बड़े घड़े में छाछ पीते हैं और एक बार बैठ के पी जाते हैं। बूढ़ा आदमी कह रहे हैं 100 साल का होगा, लेकिन छाछ का मटका ले लेता है, एक बार उसने मुंह में डाल दिया तो घड़ा खाली होने तक नीचे नहीं करता, पूरा घड़ा पी जाता है छाछ का। और दूध के क्या कहने, इतना दूध है कि बस जिसको जितना चाहिए उतना पी सकते थे पहले की बात, 15-20 साल पहले केवल। और वो कहते थे घी उनके पास इतना था, भोजन तो घी में बनाते ही थे, लेकिन सर में तेल नहीं लगाते थे, घी लगाते थे। शरीर में कुछ भी हो मालिश करना वो घी से करते थे। वो कहते थे कि हम उन लोगों के पास नहीं बैठ सकते थे क्योंकि घी की उनको गंध आता था उनके पास, उनके शरीर से सब जगह घी लगाते थे, कुछ भी हो घी लगाना, इतना घी था उनके पास। हम देखते हैं कि वृंदावन में भी जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ, तो जो उत्सव मनाया गया ब्रज में उस समय, उसमें उन्होंने क्या किए, सारे ब्रजवासी एकत्र होकर नाच गाना तो कर ही रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वो तो बोल ही रहे थे, लेकिन साथ साथ सारे गोप गोपियां एक दूसरे के ऊपर क्या फेंक रहे थे, मक्खन, दूध, दूध छिड़क रहे हैं, कोई मक्खन फेंक रहे हैं, ये सब चल रहा है, इतना मक्खन। आज अब बाजार में लेने जाओ मक्खन तो बस 10 बार सोचना पड़ता है कितने पैसे जाएंगे, क्या है, और ये भैंस के दूध का मक्खन है कि किसका मक्खन है, क्या है। वह इतना मक्खन उनके पास, इतना घी, इतना दूध, इतना छाछ, कोई सीमा नहीं। इसलिए कहावत है, गवयो धनवान धान्य धनवान, जिसके पास गाय है और जिसके पास अनाज है वो धनवान है। आखिर हमको पीने के लिए दूध चाहिए, खाने के लिए धान्य अनाज चाहिए, लेकिन आजकल धनवान व्यक्ति कौन माना जाता है, जिसके पास तो बड़ा पासबुक मोटा सा हो, जिसके पैसे आजकल किसी कंप्यूटर में कोई स्टैटिस्टिक्स अंक हो, अभी कल होगा नहीं होगा बैंक में पैसा पता नहीं, बैंक कहीं डूब जाए, कितने सारे बड़े बड़े बैंक भी डूब गए, एक बार हम पैसे बैंक में जमा देते हमारे हाथ के बाहर चला गया, पता नहीं क्या होगा उसका, विश्वास पे अब दे देते हैं। और ये पैसे का नोट है आजकल का धन, अकाल के समय क्या हम पैसे के नोटों को खा सकते हैं, नहीं। पैसे के नोट ये तो कागज का टुकड़ा है, ये कैसा धन है, और इसमें भी क्या लिखा होता है, आपने देखा है कोई रुपए का नोट, किसी के पास कोई रुपए का नोट है इधर, उसमें क्या वचन दिया है, प्रॉमिस क्या लिखा है उसमें, नहीं प्रॉमिस क्या है उसमें, एक और एक प्रॉमिस है उसमें, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ 100 रुपीज, मतलब ये 100 रुपए के नोट पे लिखा है कि मैं ये वचन देता हूं कि इस व्यक्ति को जिसके हाथ में ये नोट है उसको मैं 100 रुपए दूंगा, मतलब ये 100 रुपए नहीं है, ये नोट क्या है, केवल एक वचन है कि मैं इसको 100 रुपए दूंगा, मतलब कागज का टुकड़ा एक वचन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमको वचन दे रही है कि आप हमें हमारे पास ले आओ, आपको हम 100 रुपए देंगे, लेकिन ये 100 रुपए नहीं है, ये केवल उनका वचन है। इस तरह से ये आधुनिक अर्थव्यवस्था बस ऐसे डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए ऐसे आधार पे स्थित है कि कुछ भी हो सकता है, होता भी है, हम देखते हैं। एक अफवाह कोई फैल जाती है कि ये बैंक बंद होने वाला है, तो हजारों लोग खड़े हो जाते हैं बैंक में सुबह से, चलो अपना पैसे दे दो पैसे दे दो। एक रुपए में क्या कीमत है। तो ये है आजकल की अर्थव्यवस्था। इसलिए इतने चोर बढ़ गए, इतना उधार बढ़ गया, फिर उधार लेके लोग लौटा नहीं पाते। कोई लोग ईमानदारी से लौटाना चाहते हैं, नहीं लौटा सकते, कोई लोग जानबूझ के नहीं लौटाते। इस तरह से पूरी तरह से एक प्रकार का तहस नहस हो गया है सारा अर्थव्यवस्था हमारी। और फिर भी क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में इतना चमक धमक है बाहरी रूप से, तो लोगों को लगता है कि यह असली चीज है। और जब हम गाय भूमि और भगवान की बात करते हैं, सोचे ये तो पुराना फैशन है, तो वो जमाना तो गया, तुम तो बहुत पिछड़े हुए आदमी हो, थोड़ा फॉरवर्ड होना चाहिए आदमी को। फॉरवर्ड होना मतलब लोन लेते रहो, अंतिम दम तक वो लौटाते रहो, और फिर अपने बच्चों के ऊपर वो छोड़ के चले जाओ। ये है अर्थव्यवस्था। तो खैर, आखिर में हर एक व्यक्ति गरीब है जिसके पास भक्ति नहीं है। दीन व्यक्ति कौन है? जिसके पास भगवान कृष्ण नहीं है वही दीनहीन है। जिसके पास धन है लेकिन उसके पास कृष्ण भगवान नहीं है, वो भी गरीब है। जो गरीब है आर्थिक दृष्टि से और जिसके पास भगवान नहीं है, वो तो है ही गरीब दोनों दृष्टि से। लेकिन चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो भौतिक दृष्टि से, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्त है तो उसके पास सबसे बड़ा धन है, असली धन। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब भगवान कृष्ण की भक्ति करें, भगवान के श्री कृष्ण के प्रभुत्व को स्वीकार करें, और हमारा सब कुछ, हमारा शरीर, हमारा धन, हमारा कुटुंब, घर, गाड़ी, सब कुछ उनकी सेवा में इस्तेमाल करें। यही सही बुद्धि है, यही पागलपन से बचने का एकमात्र तरीका है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही है तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? गायों की संख्या कम होने का कारण तो यही है कि लोग भूल चुके हैं कि गाय हमारे माता हैं, धर्महीन हो गए हैं, इसलिए गाय का धार्मिक दृष्टि से महत्व नहीं जानते। और आर्थिक दृष्टि से भी उन्होंने इतना कृत्रिम अर्थव्यवस्था अपना लिया है कि गाय का हमारे अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या है, लाभदायक कैसे हो सकती है गाय, इनको भी भूल चुके हैं, इसलिए गायों की हत्या करते हैं। लोग पापी हो गए हैं, भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए गाय की हत्या करते हैं। तो कैसे गायों की संख्या बढ़ाई जा सकती है? फिर से धर्म का प्रचार करके, फिर से धार्मिक होके। तो हम सबको भी इस तरह का प्रचार करना चाहिए, इस तरह से लोगों में धीरे धीरे ये जागृति आ जाएगी। आजकल की अर्थव्यवस्था इतनी कृत्रिम है कि हर एक आदमी फेल तो होएगा ही, कुछ भरोसा नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि ऐसे हम आदर्श जगह बनाएं जहां वैदिक अर्थव्यवस्था चले। धीरे 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 से इस कौन संस्था में भी ऐसी प्रयत्न चल रहे हैं जगह जगह में, जहां आधुनिक अर्थव्यवस्था पे नहीं लेकिन वैदिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार हम जीवन बिताने का प्रयत्न करें। ठीक है, प्रश्न ये है कि हमारा जो कोटा है वो कितना है, वो आजकल समझ में नहीं आता। नहीं, इतना कठिन नहीं है समझना। जो हमारे प्रारब्ध से हमें मिलता है, हमारी ईमानदारी के प्रयास से जो हमको हासिल हो सकता है, वो हमारा कोटा है। बस हमारी ईमानदारी के काम से अगर जितना हमारे हाथ में आ गया तो आ गया, उसका हम भोग कर सकते हैं, परंतु भगवान को अर्पण करके। तो ये हमारा कोटा है। और जो ईमानदारी के काम से हमको नहीं मिलता है, जिससे हम दूसरे को धोखा देना पड़ता है, दूसरों से चोरी करना पड़ता है, तो ऐसा धन ईमानदारी का धन नहीं है, तो वो हमारा कोटा नहीं है। दूध वगैरह हुआ करता था बहुत बड़ी संख्या में, आजकल तो इतने महंगे हो गए हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उस जमाने में तो बहुत था, इसलिए उनके लिए कोई समस्या नहीं थी वो, क्योंकि हम भगवान के ऊपर हमारा पूरा भरोसा नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि भगवान अगर कल हमसे सब कुछ छीन भी लेना चाहें तो हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम तैयार नहीं होते हैं तो हम डर जाते हैं कि कल क्या होगा, अगर भगवान ने उन्हीं की संपत्ति फिर से ले ली तो क्या होगा। अगर हमने पूरी तरह से भगवान पर भरोसा रखा, उनके ऊपर निर्भर रहे, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे बोल सकते हैं आप धन हमारे लिए रखिए या ले जाइए, आपकी इच्छा, धन आपका ही है। तो ये भावना हमारी रहेगी तो हम निर्भय हो जाएंगे। प्रश्न ये है कि प्रवचन में बताया गया कि सारे यहाँ प्राणी सब चोर हैं, क्योंकि वो भगवान की संपत्ति को का भोग कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि हम सब तो भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चा जब पिताजी के संपत्ति का भोग करता है तो वो चोरी कैसे हो जाता है? पहली बात है तो कम से कम उसे ये मेरे पिता है स्वीकार तो करना चाहिए। कितने लोग हैं जो स्वीकार करते हैं कि मेरे पिताजी की है? सब बोलते मेरा है क्या भगवान, मेरे बल से मैंने कमाया है, किधर है भगवान, तो मेरी बुद्धि से मेरे बल से मैंने ये सब कमाया हुआ है। तो भगवान को मानेंगे नहीं तो फिर क्या अधिकार उनको? अगर कोई लड़का है जो अपने पिता के बात को नहीं मानता है और पिता के घर को छोड़ के जाता है, फिर उसके ऊपर पिता के जायदाद के ऊपर क्या अधिकार है उसका? पिता के घर में जो संपत्ति है उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जब तक वो पिता के साथ में रहेगा, पिता की बात मानेगा, पिता की सेवा करेगा, पिताजी के साथ में रहकर सब करेगा, तब तक उसको जायदाद या जो संपत्ति है उसके ऊपर अधिकार है। जब खुद वो पिताजी को छोड़ के जाएगा, आपके साथ नहीं रहना, आपकी सेवा नहीं करनी है, बाहर रहेगा और फिर अपेक्षा करेगा कि मुझे पिताजी का धन भी चाहिए, क्या ये सही है? अगर वो पिताजी की बात को मानेगा, पिताजी कहेंगे आओ मेरे साथ रहो, मेरा धन तुम्हारा धन, हम साथ में एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे। लेकिन बच्चा बोलेगा मुझे अलग होना है, पिताजी नहीं चाहते, लेकिन क्या करेंगे पिताजी, बच्चा अलग होना चाहता। तो अगर कोई बच्चा पिताजी की संपत्ति को स्वीकार करे कि ये पिताजी की है, और पिताजी की अनुमति तो ले कम से कम, और ऐसा ना हो कि पिताजी ने चार भाइयों के लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग बांट के दिया है, तो एक भाई ये भी पिताजी के बल्कि दूसरे भाई को जो दिया वो छीन के ले ले, ये भी ठीक है, पिताजी की संपत्ति है, लेकिन पिताजी ने उसको दिया हुआ है, मेरे दूसरे भाई को दिया हुआ है, मुझे भी थोड़ा दिया है, उसको भी थोड़ा दिया है। तो दूसरे भाई को जब मेरे पिताजी ने दिया है, उसके पास जो वो छीन के मैं ले आऊं तो वो ठीक है नहीं? तो मेरे पिताजी ने जो मुझे दिया है उसका भोग मैं कर सकता हूं। ये है कोटा सिस्टम।